TS 9 विश्वास के कार्य। अपने विश्वास के दावे के अनुसार जीना। विश्वास स्थिर रहता है। डॉक्टर डेविड प्लाट। आपके पास यदि बाइबल है, और मेरी आशा है कि आपके पास है, तो मेरे साथ याकूब 4 निकालें। हम याकूब की पुस्तक से इस श्रृंखला के अंतिम संदेश पर आ गए हैं। हम अध्याय 4 के अंत में और फिर अध्याय 5 को देखेंगे। और हाँ, याकूब ने हमें काफ़ी परेशान किया है, लेकिन अच्छे के लिए, परमेश्वर के लोगों की भलाई के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। आप सोचें कि वचन ने पिछले कुछ माह में परमेश्वर की महिमा के लिए, संसार भर के लोगों पर प्रभाव डालने के लिए क्या किया है। वचन भला है। रूद जैसी पुस्तकें हमें सांत्वना देती हैं, और याकूब जैसी पुस्तकें हमें चुनौती देती हैं, और वे हमें संतुलन में रखती हैं, ताकि हमारा ध्यान उस पर रहे जो परमेश्वर ने कहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने वचन को लेकर हमारे जीवन को और हमारे परिवारों को और विश्वास के परिवार को वो रूप देगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, जो हमारे आसपास के उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो मसीह को नहीं जानते हैं, और अंततः जो संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे अच्छा है। विश्वास जो स्थिर रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद, वचन कार्य करता है। दुर्भाग्यवश इसका अर्थ है कि हम सारे स्थानों पर जाने वाले हैं। यदि इस पूरे पद में कोई एकीकृत विचार है, तो वो है विश्वास जो स्थिर रहता है, विश्वास जो बना रहता है। मैं चाहता हूं कि हम इस पद को पढ़ें, और फिर मैं विश्वास की 7 विशेषताओं के बारे में सोचना चाहता हूं, जो अंत तक स्थिर रहता है, विश्वास जो अनंत काल तक बना रहता है, और वो हमें याकूब में हमारे अध्ययन के उपसंहार पर पहुँचाए। अतः मेरे साथ याकूब अध्याय 4:13 को देखें। याकूब लिखता है, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हे धनवानो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताज़ा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। वो तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने, धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। याकूब 4:13, 5:20। पिता, हम जानते हैं कि आपका वचन भला है, और हमसे बात करने के लिए, हमें ये वचन देने के लिए और इस पल इसे समझने के लिए, हमारे मनों और हमारे दिलों को खोलने के लिए, आपके आत्मा द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल ऐसा ही करें। पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो चोटिल हैं और समस्या से, कष्ट से गुजर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपका वचन उन्हें सांत्वना दे। मेरी प्रार्थना है कि पाप के हमारे किसी भी संघर्ष में आपका वचन हमें कायल करे, और मेरी प्रार्थना है कि आप अल्प आयु के बारे में हमारी आँखों को खोलें, ये महसूस करने में आप हमारी सहायता करें कि हम कोहरा हैं, भाप हैं, फिर आप हमारे जीवनों को लें और मानव इतिहास के धरातल पर अपने नाम की महिमा के लिए प्रयोग करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहली विशेषता, मैं आपको स्थिर रहने वाले विश्वास की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और हम इनमें से तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए तैयार रहें, बहुत जल्दी एक से दूसरे पर जाएंगे। परमेश्वर की सर्वोच्चता के सामने दीन होता है। पहला, स्थिर रहने वाला विश्वास परमेश्वर की सर्वोच्चता के सामने दीन होता है। व्यापारिक यात्रा वास्तव में पहली सदी में भी साधारण थी, और एक व्यापारिक भाषा कुछ इस प्रकार होगी, जैसे 13 में बताया गया है, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और लोग व्यावसायिक बातों और व्यावसायिक योजनाओं के बारे में इस प्रकार बात करते जैसे कि वो निश्चित था। और याकूब हमें यहां चुनौती दे रहा है कि हम भौतिक क्षेत्र में इतने अधिक घुल सकते हैं, अपनी योजनाओं, अपने कार्यों और अपनी रणनीतियों, अपने पेशे की बातों में इतने घुल सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और हम कैसे धन कमाएंगे। इनमें हम इतने व्यस्त हो सकते हैं कि यदि हम सावधान नहीं हैं तो हम आत्मिक यथार्थों के प्रति अंधे हो जाएंगे। भौतिक क्षेत्र में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि हम आत्मिक यथार्थों के प्रति अंधे हो जाते हैं। यहाँ समस्या योजना की नहीं है, समस्या ऐसी योजनाओं को बनाना है जिनका परमेश्वर हिस्सा नहीं है। याकूब कहता है, तुम अगले वर्ष ये करने की योजना बना रहे हो, तुम इस प्रकार धन कमाओगे। वास्तविकता ये है कि आपके अगले पल की सांस की भी गारंटी नहीं है। तुम परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अधीन हो। तुम तो इस तरह व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारी सारी योजनाएं पत्थर की लकीर हैं और वे होकर ही रहेंगी, जबकि वास्तविकता ये है कि तुम्हारे जीवन की इतनी भी गारंटी नहीं है कि तुम आज का दिन पूरा कर लोगे। तस्वीर ये है और ये थोड़ा रुग्ण सा लगता है, परंतु वचन की मांग है कि हम इस वास्तविकता का सामना करें। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम में से कोई भी व्यक्ति आज रात जिंदा अपने तकिए पर सिर रखेगा। आप चाहें कितने भी जवान या बूढ़े हों, वास्तविकता यह है कि आपके जीवन की इतनी गारंटी भी नहीं है कि आप आज का दिन जी लेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन और मृत्यु पर सर्वोच्च है और हमारे जीवन कोहरे धुएं के समान हैं, वास्तव में भाप हैं। एक पल यहाँ और अगले पल मृत्यु, और हम कल यहाँ केवल तभी होंगे यदि परमेश्वर की इच्छा हो। परमेश्वर हमारे जीवन और हमारी मृत्यु पर सर्वोच्च है और हमारी गतिविधियाँ तथा हमारी उपलब्धियों पर भी। यदि ये प्रभु की इच्छा है तो हम जिएंगे और इस काम को या उस काम को करेंगे। जो कुछ हम करते हैं, जो भी हमने हासिल किया है इस जीवन में, जो कुछ प्राप्त करते हैं, सब कुछ अंतिम रूप से परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अधीन है। अब मैं यहाँ किसी निष्क्रिय भाग्यवाद को उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और इसलिए मैं केवल प्रतीक्षा करूँगा और देखूँगा कि वो क्या निर्णय लेता है। नहीं, याकूब यहाँ इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इस पूरी पुस्तक में उसने हमें आज्ञाएं, कार्य, व्यवहारिक निर्देश दिए हैं कि हम उन्हें मानें और उन पर चलें। अतः ये परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के प्रति एक सक्रिय नम्र समर्पण है, जो कहता है, ठीक है, मेरे पास ये योजनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि यदि प्रभु की इच्छा हो तभी ये होगा, यदि परमेश्वर की इच्छा हो तभी मैं जीवित रहूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रत्येक योजना को बनाने से पहले ये कथन कहना ही है। यद्यपि यदि इसे हम ऊंची आवाज़ में कहते हैं तो भी कोई हानि नहीं है, केवल हमारे दिलों का प्रतिबिंब है। ये एक नज़रिया है जो निरंतर परमेश्वर के अधीन है। ये इस संसार में सोचने और जीने का पूर्णता अलग तरीका है। ये संसार निरंतर हमें ये जताने की कोशिश करता है कि हम सदा यहीं रहेंगे। अतः इस तरह जियो जैसे कि आप हमेशा यहीं रहेंगे। और याकूब कहता है, नहीं, परमेश्वर के अधीन रहो और हाँ, काम करो और योजना बनाओ और जीवन बिताओ, लेकिन इस तरह जियो कि तुम्हारी हर सांस परमेश्वर पर निर्भर है। अमरीकी संस्कृति की आत्म पर्याप्तता में ना जाएं, पवित्र शास्त्र की परमेश्वर निर्भरता में जिएं। ये जीने का बिल्कुल अलग तरीका है। हमारी संस्कृति में सब कुछ हमसे कहता है, खुद पर निर्भर रहो। पवित्र शास्त्र कहता है, हर बात में परमेश्वर पर निर्भर रहो। स्थिर रहने वाला विश्वास परमेश्वर की सर्वोच्चता के सामने नम्र होता है। वास्तविकता यह है, हम में से प्रत्येक का जीवन भाप के समान है। इस पल हम यहाँ हैं और पलक झपकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अतः यहाँ आपका जीवन परमेश्वर की सर्वोच्चता के अधीन उसकी महिमा के लिए कैसे काम आ सकता है? स्थिर रहने वाला विश्वास परमेश्वर की सर्वोच्चता के सम्मुख नम्र होता है, परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है। दूसरा, उससे संबंधित स्थिर रहने वाला विश्वास परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है। पद 17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। परमेश्वर के प्रति नम्र समर्पण का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के प्रति नम्र आज्ञा पालन। अब यहाँ याकूब हमें एक आवश्यक दृष्टिकोण देता है जो वास्तव में उसका विपरीत है। जिस प्रकार अक्सर हम पाप के बारे में सोचते हैं, हम अक्सर पाप के बारे में इस अर्थ में सोचते हैं, आज्ञा के पाप यानी जिन्हें परमेश्वर ने करने से मना किया है। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, इसलिए झूठ बोलना पाप है। परमेश्वर कहता है लालच मत करो, इसलिए लालच करना पाप है। परमेश्वर कहता है ये काम मत करना, और हम जानते हैं कि जब हम उन्हें करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र हमें पाप के बारे में केवल यही तस्वीर नहीं देता है, और याकूब यहाँ हमें स्पष्टता याद दिला रहा है कि चूकने के पाप भी हैं जिनमें वे बातें शामिल नहीं होंगी जिन्हें परमेश्वर ने करने से मना किया है। चूकने के पाप उन बातों की परवाह ना करना है जिन्हें परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। परमेश्वर के वचन को, उसकी इच्छा को सुनकर भी उसे नहीं करना। जब हेदर या मैं कालेब या जोशुआ से कहता हूँ उसे अपने भाई पर मत फेंको, और यदि वे इसे करते हैं तो वे अनाज्ञाकारी हैं। साथ ही यदि हम कहें जोश या कालेब सफाई करो, ये सफाई का समय है, यदि वे सफाई नहीं करते हैं तो क्या वो अनाज्ञाकारिता है? बिल्कुल, वो अनाज्ञाकारिता है। तस्वीर ये है, जब अधिकृत व्यक्ति परमेश्वर द्वारा कुछ करने के लिए कहा जाता है हम उसकी परवाह नहीं करते। और याकूब ने हमसे कहा है पक्षपात मत करो, तो पक्षपात करना क्या है? पाप। उसने हमें कंगालों की देखभाल करने के लिए भी कहा है, तो कंगालों की देखभाल नहीं करना क्या है? पाप। इसी कारण मैंने पहले ये कहा था कि यदि कोई मसीह होने का दावा करने के बावजूद दिन प्रतिदिन लैंगिक अनैतिक में संलग्न रहता है और उन्होंने अपने आप को उस काम के लिए दे दिया है जिसे करने से परमेश्वर ने मना किया है, जब परमेश्वर के वचन में भी ये दिखाया गया है कि ये उसके विरुद्ध है, तो परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर इसे करने से मना किया है, फिर भी वे दिन प्रतिदिन लैंगिक पापों में लगे रहते हैं। ये बहुत गंभीर पाप है, मैं तो कहूँगा असीम रूप से गंभीर पाप। पवित्र शास्त्र कहता है व्यभिचारी परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। ये अत्यधिक खतरनाक है। अब हमारे लिए इसे देखना आसान है, लेकिन यहाँ चूकने के पाप की तस्वीर को लें। जब परमेश्वर कंगालों की देखभाल करने के लिए कहता है और जब हम इसे संसार में देखते हैं और फिर भी हम दिन प्रतिदिन कंगालों को अनदेखा करते हैं, ये गंभीर है, अनंत रूप से गंभीर पाप है। मत्ती 25 पद याद है, जब कंगालों की सुधि लेने की बात आती है तो चूक के पापों के बारे में यीशु ने इसी प्रकार बातें की। जिन लोगों ने भूखों को भोजन नहीं खिलाया, नंगों को वस्त्र नहीं दिए, निर्धनों की सहायता नहीं की, उनसे वो कहता है मुझसे दूर होकर उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, इससे न चूकें। उन्हें नरक की सजा मिली उनके कामों के कारण नहीं, बल्कि उन्होंने जो नहीं किया था उसके कारण। हमने इसे संसार में देखा है, हमने बहुत लंबे समय तक इसे देखा है, हमने समकालीन मसीहत में वचन में इसे अनदेखा कर दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें वचन में सिखाया है कि ये प्राथमिकता है, ये हमारे लिए आज्ञा है कि हम संसार में अपने कंगाल भाइयों और बहनों की देखभाल करें। इसलिए याकूब की श्रृंखला के बाद वचन में हमने बार बार जो देखा है उसके बाद जाकर पहले की तरह ही अपने जीवन को निरंतर व्यतीत करना पाप है। ये पाप करना है, ये स्थिर नहीं है, ये अनंत रूप से गंभीर है। स्थिर रहने वाला विश्वास परमेश्वर की इच्छा को मानता है, परमेश्वर के न्याय में भरोसा रखता है। यह हमें तीसरी विशेषता पर लाता है। स्थिर रहने वाला विश्वास परमेश्वर के न्याय में भरोसा रखता है। याकूब में कंगालों पर ये बल मेरे विचार में पूरी पुस्तक में सबसे कठोर भाषा की ओर ले जाता है। याकूब अध्याय 5:1-6 में, और मैं चाहता हूँ आप इस भाषा के लिए पृष्ठभूमि को देखें। याकूब बल दे रहा है कि संसार का न्यायी प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, परमेश्वर का न्याय आ रहा है। इसे भाषा में देखें, 1 में वो कहता है क्लेश आ रहा है, 3 तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, ये अंतिम दिन है, 5 तुमने वध के दिन के लिए अपने आप को मोटा ताज़ा किया है, 7 प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, 8 के अंत में धीरज धरो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। फिर 9 में वो कहता है हाकिम द्वार पर खड़ा है। इन पदों की पृष्ठभूमि में यही स्वर व्याप्त है। यह हमें वापस याकूब 4 के अंत में ले जाता है। हमारे जीवन भाप हैं, अगले ही पल वे जा सकते हैं, लेकिन हाकिम द्वार पर है और परमेश्वर का न्याय आ रहा है। और जब वो आता है वो 2 काम करेगा जिन पर याकूब यहाँ बल दे रहा है। 1, वो पापियों का न्याय करने आ रहा है। अब मैं यहाँ याकूब 5 में अत्यधिक महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत करना चाहता हूँ। ये 6 संभवतः धनी अविश्वासियों के लिए हैं। वो उन्हें कभी भाई नहीं कहता है, वो केवल यही कहता है कि रो और विलाप करो। भाषा लगभग वैसी ही है जैसी हम अन्य जातियों पर न्याय और दंड की घोषणा करने वाले भविष्यवक्ता में देखते हैं। प्रत्येक संकेत के अनुसार जो हमारे पास है, ये 6 विशेष रूप से धनी गैर मसीहों के लिए लिखे गए हैं और ये उनकी संपत्ति पर अभियोग भी नहीं है, परंतु ये उनके द्वारा संपत्ति का पापमय प्रयोग का अभियोग है। अब आप पूछ सकते हैं, मसीहों और कलीसियाओं को लिखे गए पत्र के बीच में याकूब अविश्वासी धनवानों की ओर क्यों जाएगा? मेरे विचार से उद्देश्य द्विस्तरीय है। 1, हम एक पल में इसे देखेंगे, वो कलीसिया को याद दिला रहा है कि परमेश्वर का न्याय होने वाला है, विशेषता जिन लोगों का धनवानों द्वारा शोषण किया जा रहा था, वे ये भरोसा कर सकते थे कि यद्यपि उनके जीवनों में दिन प्रतिदिन अन्याय हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का न्याय आ रहा है। 2, हम जानते हैं कि विश्वास के समुदाय में कुछ लोग ऐसे थे जो धनवान थे, और मुझे निश्चय है यहाँ 1-6 में, यद्यपि ये स्पष्टता गैर मसीही धनवानों के लिए हैं, लेकिन इनमें विश्वासी धनवानों के लिए भी अप्रत्यक्ष चेतावनियां हैं, उन मसीहों के लिए जिनके पास धन संपत्ति थी, कि उनको इस तस्वीर से बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को इस प्रकार नहीं जीना चाहिए, और मैं चाहता हूँ हम इसे इस प्रकार से सुने। मैं चाहता हूँ हम इसे 1 के कमज़ोर, निर्धन, संभवतः सताए हुए और शोषित मसीहों के दृष्टिकोण से सुने, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि हम इसे सुने क्योंकि हम धनी अधिक हैं, और हमने बार बार इसके बारे में बात की है कि हमारी कलीसिया शेष संसार की तुलना में अत्यधिक धनी है, और इसलिए हमें सुनने की आवश्यकता की क्या इस वचन में हमारे लिए कोई अप्रत्यक्ष चेतावनी है। वो 4 कार्यों के लिए पापियों का न्याय करने आ रहा है जिन्हें वो यहाँ बताता है। 1, वो धन एकत्रित करने के लिए पापियों का न्याय करने आ रहा है। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, याकूब अध्याय 5:2-3। पुनः ये अभियोग धन के कारण नहीं है, परंतु इसलिए जो वे उससे कर रहे थे, वे इसे एकत्रित कर रहे थे। लूका 12 में यीशु के दृष्टांत के अनुसार वे अपने खलिहानों में बटोर रहे थे। वे अपनी संपत्तियों और अपने वस्त्रों और अपने धन को बटोर रहे थे, बचत कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे और ये सड़ रहा था। कीड़े तुम्हारे वस्त्रों और उन सारी वस्तुओं को खा रहे हैं जिनकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, जबकि तुम्हारे चारों ओर के लोग बड़ी ज़रूरत में हैं और तुम्हारे पास सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ये नष्ट हो रहा है। वो कहता है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। और कुछ कहते हैं, शायद याकूब को यह कोई शब्द प्रयोग करना था, क्योंकि सोना दूसरी धातुओं के समान नष्ट नहीं होता है, परंतु यही मुख्य बिंदु है जिसे हम स्थाई मानते हैं, जिसमें हम इस संसार में अपना पूरा जीवन उंडेल देते हैं, जिसे हम इस संसार में स्थाई मानते हैं। सर्वाधिक अनमोल वस्तु जिसे हम स्थाई मानते हैं वो भी जल जाएगी और नष्ट हो जाएगी। और याकूब कहता है, तुम भी इसके साथ जल जाओगे। तुमने बटोरा है, तुमने अपने लिए बड़े खलिहान बनाए हैं, और जब हाकिम आएगा वो उसके साथ तुम्हें भी आग में जला देगा। तुम्हारी बटोरी हुई संपत्ति तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगी। ये तस्वीर है, पृथ्वी पर उनके खजाने अनंत जीवन में उनकी पीड़ा का कारण बनेंगे। लूका 12, एक धनी व्यक्ति ने कहा, मैं यह करूँगा, मेरे साथ बने रहें, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। लूका अध्याय 12 पद 18 से 19, क्या अमरीकी सपने का चित्र नहीं है? एकत्रित करो, एकत्रित करो ताकि तुम स्थिर हो जाओ, खाओ पियो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब है जो ज़रूरी है। इस संस्कृति में हम इन्हीं के पीछे हैं और यीशु ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। लूका अध्याय 12 पद 20 से 21, भाइयों और बहनों, चौकस रहो, पृथ्वी पर धन बटोरने से चौकस रहो, क्योंकि कीड़ा या काई बिगाड़ते हैं या चोर सेंध मारकर चुरा लेते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना ही चोर सेंध लगाते हैं। वो धन बटोरने के लिए पापियों का न्याय करने आ रहा है, दूसरा मजदूरों से छल के लिए। उस समय ज़्यादातर ज़मीन थोड़े से स्वामियों के हाथों में थी और अपनी संतुष्टि के लिए वे अक्सर अपने मजदूरों की मजदूरी देने में लापरवाही करते थे। अब एक शोषित और निर्धन मजदूर को मजदूरी न मिलने का अर्थ है उसे रोज़ की रोटी, भोजन, जल न मिलना। वो उनसे कहता है, तुम्हारी धन संपदा बढ़ रही है जबकि लोग मर रहे हैं। तीसरा, अपने आप में मग्न रहने के लिए तुम्हारा न्याय किया जाएगा। इसे समझें, तुमने वध के दिन के लिए अपने आप को मोटा ताज़ा किया है। याकूब अध्याय 5 पद 5, इसे अंदर बैठने दें। जैसे एक वध किए जाने से कुछ ही पल पहले चारे का आनंद लेती है, ये उन लोगों की तस्वीर है जो विलासिता में मगन रहते हैं। वो कहता है, इन सब का आनंद ले रहे हो जबकि वास्तविकता यह है कि एक ही पल में वध हो जाओगे। कैसी तस्वीर है! और ये सब हमें तीखे अभियोग की ओर ले जाता है। लोगों पर दोष लगाने के लिए उनका न्याय किया जाएगा। अपनी विलासिता और भोगों में वे निर्दोष मनुष्यों पर दोष लगा रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। याकूब अध्याय 5 पद 6, एक व्याख्याकार ने मुझे चौंका दिया जिसने पद 6 के बारे में कहा, यहूदी संसार में किसी को आर्थिक सहायता से वंचित करना उसकी हत्या करने के समान था। निर्धन को उसका हक ना देना, उसके हक को दबाना हत्या के बराबर है। मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मैं उस समय संपन्न संस्कृति के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया जिसमें हम रहते हैं, जबकि हजारों ऐसे लोग हैं जो भोजन और जल के अभाव में हर दिन मरते हैं। और तस्वीर ये है, तुम मनुष्यों पर दोष लगा रहे हो और आपके द्वारा दूसरों का शोषण आपके अपने दोषी ठहराए जाने की ओर ले जाता है। अब मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ, ये वचन गैर मसीही धनवानों के लिए था। ये दंड जिन्होंने मसीही विश्वास किया है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। अतः धीरज रखें, इससे बल पाएं, साथ ही कलीसिया एक पल के लिए रुकें और पूछें, क्या संपत्ति बटोरने का, कर्मचारियों को धोखा देने का और भोग विलास में जीने का कोई प्रमाण है? और निर्धनों की उपेक्षा करने के द्वारा उनकी हत्या करने का प्रमाण है? भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में जब हम इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, संसार की अत्यावश्यक आत्मिक और भौतिक ज़रूरतों के लिए अपनी विलासिता को त्यागें। हर मोड़ पर हमारे आसपास की संस्कृति के अनुसार घूम जाने की परीक्षाएं आएंगी। मेरा अनुरोध है कि आप आगे बढ़ते रहें, हिम्मत न हारें, हिम्मत न हारें, हिम्मत न हारें। आइए हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, इसकी चिंता न करें कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं बचेगा। आइए हम ज़रूरतमंदों की खातिर जिएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, यही मुख्य बिंदु है। परमेश्वर आ रहा है, हाकिम पापियों का न्याय करने आ रहा है और वो विश्वास योग्य लोगों को छुड़ाने आ रहा है। मुझे ये पसंद है। अध्याय 5:4 दूसरा भाग, लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप शोषक धनवान द्वारा शोषित, निर्धन, सताए हुए और जूझ रहे विश्वासियों की तरह लेकर देखें। और परमेश्वर कह रहा है, मैं जानता हूँ तुम अन्याय से घिरे हो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारी पुकार सेनाओं के परमेश्वर यहोवा तक पहुँच गई है, यही तस्वीर है। परमेश्वर निर्धनों की सुनकर उनकी सहायता के लिए आने के द्वारा, ज़रूरतमंदों का बचाव करने के द्वारा अपनी ताकत और महानता को दिखाता है। वो कह रहा है कि तुम्हें छुड़ाने वो आ रहा है, राजा आ रहा है। प्रभु के आने तक धीरज धरो, धीरज धरो, प्रभु का आगमन निकट है। पद 8, ये इस संसार में हमारे जीने के तरीके को बदल देता है। जब हम निर्णायक प्रयोग के बारे में कर्मचारियों से बात कर रहे थे तो मुझे याद है, एक दिन हम सोच रहे थे कलीसिया के बजट में ये कैसा दिखेगा, और एक कर्मचारी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि हम अगले वर्ष इस पर कार्य करेंगे, जैसे कि यीशु वर्ष की समाप्ति से पहले आ रहे हैं। हाँ हाँ, यदि वो वापस आ रहा है तो अपने खलिहानों में ज़्यादा इकट्ठा मत करो, इसे इस तरह खर्च करें कि जब वो वापस आए तो लोग तैयार रहें। ये हमारे जीने और खर्च करने के तरीके को बदल देता है। ये बहुत अलग है, ये बहुत अलग है। हे परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखें, उसके आने की प्रतीक्षा करें और उसके आने की प्रतीक्षा करें और उसके आगमन की प्रतीक्षा में जिएं। कष्ट में धीरज धरता है। स्थिर रहने वाला विश्वास परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखता है। अब यह हमें अगली तस्वीर पर लाता है। स्थिर रहने वाला विश्वास कष्ट में धीरज धरता है। इस पत्र में पद 7 से 11 तक का ये स्पष्ट विषय है। जब भी आप धीरज को देखें, उस पर निशान लगाएं, इसे सुने, धीरज धरो। पद 7 में इस पर निशान लगाएं। पद 8, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। पद 10, दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। पद 11, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, धीरज। और याकूब हमें धीरज की 3 अतुल खूबसूरत तस्वीरें देता है। उसने कहा, एक किसान की तरह धीरज रखो जो फसल की प्रतीक्षा करता है। एक कृषि प्रधान समाज में जहां मौसम का कुछ पता नहीं रहता, जहां मौसम आपके जीने या मरने का निर्धारण करता है, जहां आप वर्षा पर निर्भर रहते हैं, यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ता है, अत्यधिक वर्षा होने से सड़न होती है, ये सारी बातें किसान को धीरज धरना सिखाती हैं, क्योंकि किसान उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता है। धीरज के मामले में ये एक खूबसूरत तस्वीर है। मेरे साथ बने रहें। किसान के समान उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है। किसान ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि कब वर्षा हो और कब नहीं। अतः याकूब कहता है, प्रभु के आने और आपके चारों ओर के अन्याय के बारे में भी ऐसा ही है। आप कष्ट और समस्या को सह रहे हैं, धीरज धरें। कुछ बातें हैं जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए किसान के समान परमेश्वर पर भरोसा रखो जो आपके नियंत्रण से बाहर है। उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। परंतु फिर दूसरा, जिस पर आपका नियंत्रण है उससे परमेश्वर का सम्मान करें। पद 9 में याकूब बताता है, वे एक दूसरे के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे, आपस में शिकायत कर रहे थे और वे इस प्रकार बोल रहे थे जिससे उनके संघर्षों के बीच में परमेश्वर का आदर नहीं होता। और याकूब कहता है, तुम उस पर नियंत्रण कर सकते हो। याद रखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। जब वो आए तो तुम विश्वास योग्य रहना चाहते हो। क्या ये एक कठोर वचन नहीं है? इसके बारे में सोचें। शायद आज आप संघर्ष कष्ट से गुजर रहे होंगे। क्या ऐसी बहुत सी बातें नहीं हैं जो पूरी तरह आपके नियंत्रण से बाहर प्रतीत होती हैं? नियंत्रण के बाहर, इसे बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जब भी हम संघर्षों का सामना करते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अतः यहाँ का वचन है, किसान के समान धीरज धरो। जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसान आराम से बैठा रहता है और फसल नहीं बोता है, कोई काम नहीं करता है। नहीं, वो काम कर रहा है जिस पर उसका नियंत्रण है, उससे वो परमेश्वर का सम्मान कर रहा है। और हर संदर्भ में कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम कष्ट, परख या संघर्ष से जूझते समय नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने प्रत्युत्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने विचारों और शब्दों और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। भाई बहन, यदि इस पल आप संघर्ष या कष्ट का सामना कर रहे हैं तो आप उसे नियंत्रित करने के प्रयास में परेशान हो जाएंगे जो आपके नियंत्रण से बाहर है। इसलिए एक अच्छे परमेश्वर पर भरोसा रखें, एक बुद्धिमान परमेश्वर जो उन्हें नियंत्रित कर सकता है। और फिर पहचानें, स्पष्टता पहचानें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और उससे परमेश्वर का आदर करें। और किसान के समान विश्वास करें कि कटनी का परमेश्वर उचित समय पर फसल लाएगा। उस पर भरोसा रखें, उसका आदर करें। कटनी के परमेश्वर पर भरोसा रखें, कटनी के परमेश्वर का आदर करें। यही तस्वीर है। जैसे एक किसान फसल के लिए इंतज़ार करता है, फिर एक भविष्यवक्ता के समान सत्य बोलना। हाँ, भविष्यवक्ता को सताया जा रहा था, अन्याय से घिरा था, उसके बीच में वो क्या कर रहा था? ये एक निष्क्रिय धीरज नहीं है जो बैठा रहता है और कुछ नहीं करता। भविष्यवक्ता आगे रहकर परमेश्वर के सत्य को बोलता है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, संघर्ष के बीच में परमेश्वर की दया और परमेश्वर के न्याय के बारे में बताता है। मैं जानता हूँ विश्वास के परिवार में ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो संघर्षों का सामना कर रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो संघर्षों के बीच में अपने लोगों के जीवनों में अपना अनुग्रह दे रहा है कि वे परमेश्वर की अच्छाई के बारे में बता सकें और परमेश्वर की महानता के बारे में बता सकें और संघर्ष के बीच में परमेश्वर की दया के बारे में बता सकें। भविष्यवक्ता के समान सत्य बोलना और अय्यूब के समान परमेश्वर के उद्देश्य पर आशा रखना, मुझे पद 11 पसंद है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। 42 थका देने वाले अध्याय, ये कब समाप्त होगा, ये क्यों हो रहा है 42 अध्यायों तक, और अंत में वो कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आँखें अब तुझे देखती हैं। अय्यूब की कहानी का संपूर्ण सार यही है कि प्रभु करुणा और दया से पूर्ण है। अय्यूब इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। अब वहाँ पहुँचने में 42 अध्याय लगते हैं। जब आप कष्ट से होकर गुजरते हैं, भाइयों और बहनों, मेरा अनुरोध है, याद रखें कि ये अंत नहीं है। आप तराई में हैं परंतु ये अंत नहीं है। अंत परमेश्वर का उद्देश्य, वो स्वयं को करुणामय और दयालु प्रकट करेगा। अंधकार से घिरे होने पर भी अंत में वो अपने आप को करुणामय और दयालु दिखाएगा। अतः किसान के समान भरोसा रखें जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का सम्मान करें, भविष्यवक्ता के समान सत्य बोलें और अय्यूब के समान उसके उद्देश्य में आशा रखें। अब आप पद 12 पर आते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे याकूब बाईं तरफ मुड़ता है। जैसे कि अरे, मैं इसे कुछ अध्याय पूर्व बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया, और इसलिए अब यहाँ इसे बता रहा हूँ। बोली में भरोसेमंद होता है, स्थिर रहने वाला विश्वास बोली में भरोसेमंद होता है। और हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने याकूब 3 में इस पर ध्यान दिया था। इस पूरी पुस्तक में ये आवर्ती विषय है। हमारे मुंह के वचन अर्थपूर्ण भरोसेमंद होने चाहिए कि उनमें अपने आप में विश्वसनीयता की गारंटी हो। स्थिर रहने वाला विश्वास बोली में विश्वास योग्य होता है, दुख में प्रार्थना करता है। अब पुनः उस बात की ओर जो मुझे इस संदर्भ में और भी अर्थपूर्ण प्रतीत होती है, अपने आप को परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा और पवित्र आत्मा के वचन के प्रति समर्पित करो। स्थिर रहने वाला विश्वास दुख में प्रार्थना करता है। आप इस तस्वीर को देखें, वैसे ही जैसे हमने धीरज और यहाँ तक लाने वाले वचनों में देखी थी, अब हम प्रार्थना के साथ देखते हैं। पद 13, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, इस पर निशान लगाएं। पद 14, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को प्रार्थना के लिए बुलाए, इस पर निशान लगाएं। पद 15, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। पद 16, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पद 16 में बाद में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पद 17, एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे। पद 18, फिर उसने प्रार्थना की। हर पद में कम से कम एक बार प्रार्थना का वर्णन है, दुख में प्रार्थना करता है। ये निष्क्रिय धीरज नहीं है बल्कि सक्रिय धीरज है। कष्ट के बीच में आपका धीरज कैसे बढ़ता है, याकूब कहता है प्रार्थना करो। कष्ट और दुख के बीच में चलने के लिए आवश्यक धीरज केवल परमेश्वर ही दे सकता है, और वो मार्ग जिसके द्वारा आप धीरज को प्राप्त करते हैं वो प्रार्थना है, और यही खूबसूरती है। पुनः किसान के समान जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना, आपके और मेरे पास उस परमेश्वर से बात करने का सौभाग्य है जो सब कुछ पर नियंत्रण करता है। दुख में प्रार्थना करना, जब ठेस लगती है तो प्रार्थना करें। याकूब कई प्रकार की चोटों के बारे में बात करता है, शारीरिक चोट, आत्मिक चोट और परीक्षा, भावनात्मक चोट, आर्थिक चोट के बारे में वो बात करता है। और मैं जानता हूँ कि ये सब हमारे बीच में भी हैं। ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, आत्मिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। जब आपको चोट पहुँचती है तो प्रार्थना करें और खुश होने पर प्रार्थना करें। यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। याकूब अध्याय 15 पद 13, प्रार्थना और स्तुति। प्रार्थना और स्तुति ये जीने का एक महान तरीका है। प्रार्थना और स्तुति, प्रार्थना और स्तुति। वो कहता है प्राचीनों के साथ प्रार्थना करो। पद 14, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए कि वे उसके लिए प्रार्थना करें। अब आशय ये है कि कलीसिया में कोई इतना बीमार है कि वो बिस्तर पर है, कलीसिया के साथ एकत्रित होने में असमर्थ है और इसलिए उस भाई या बहन के बुलावे पर प्राचीन आकर उनकी बीमारी में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अब याकूब कहता है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। याकूब अध्याय 5 पद 14, अब 2000 वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है कि प्रभु के नाम से तेल मलने की क्या ज़रूरत है। 2000 वर्षों की चर्चा 2 मिनट में, क्या आप तैयार हैं? कुछ कहते हैं तेल में औषधीय गुण होता है, कि तेल वो सामान्य औषधीय मरहम था जिसका प्रयोग किया जाता था, और इसलिए मूलतः इसका अर्थ है प्रार्थना करो और औषधि दो। अर्थात जब आप प्रार्थना करते हैं तो भरोसा रखें कि परमेश्वर ने चंगाई के लिए साधन उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए हम औषधि का प्रयोग करते हैं। अब कम से कम इस तस्वीर के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि सबसे पहले विभिन्न प्रकार के मरहम हैं जिनका विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और ये उनमें से एक है। ये आम तस्वीर नहीं है जो हम देखते हैं, यद्यपि पहली सदी में ये आम था, लेकिन पूरे पवित्र शास्त्र में ये आम तस्वीर नहीं है। और दूसरा, यदि कोई बीमार है और उस बीमारी के लिए दवाई है, मैं नहीं सोचता कि यहाँ का आशय यह है कि औषधि प्राचीनों को लेकर आनी है। यदि अपनी बीमारी में आप मुझ पर या किसी प्राचीन पर सही दवाई बताने के लिए निर्भर हैं तो ये एक अच्छी अवस्था नहीं है। मैं नहीं सोचता कि याकूब यहाँ कुछ ऐसा संकेत दे रहा है। यदि कोई रोगी है और किसी के पास दवाई है तो वो दवाई दे। तो क्या तेल दवाई है? मैं उस तरफ नहीं झुक रहा। कुछ कहते हैं कि तेल संस्कारात्मक है और इसीलिए रोगी का तेल से अभिषेक करना कलीसिया का संस्कार बन गया है, विशेषता कैथोलिक कलीसिया के लिए, और एक गंभीर बीमार व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के लिए तैयार करने हेतु पुरोहित अक्सर यही करते हैं। तेल की इस तस्वीर में एक संस्कार है जो हमारे पापों को ढांपता है और आत्मा को मृत्यु के लिए तैयार करता है। अब कई बातों के बीच मैं नहीं सोचता कि ये किसी भी तरह इस संदर्भ के अनुरूप है। संपूर्ण बिंदु चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, न कि मृत्यु के लिए प्रार्थना करना। अतः ऐसा नहीं लगता कि याकूब यहाँ ऐसा कह रहा है। अतः मेरा नम्र मत है कि तेल औषधि या संस्कार के लिए नहीं है, बल्कि तेल प्रतीकात्मक है। मेरा विचार है कि पूरे पवित्र शास्त्र में एक तस्वीर है, विशेषतः पुराने नियम के यूनानी अनुवाद में, जो इसी शब्द का किसी व्यक्ति को विशेष उद्देश्य के लिए, अलग करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रयोग किया गया है। और तस्वीर ये नहीं है कि तेल कोई ताकत है, तस्वीर ये है कि तेल किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रतीक है जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया गया है। मेरा विचार है, जब आप प्राचीनों के आने की इस तस्वीर को देखते हैं और यहाँ बल प्रार्थना पर है, तेल मलना गौड़ है और तस्वीर परमेश्वर की संभाल के अधीन किसी व्यक्ति को अलग किए जाने के उदाहरण की और ये कहने की है, परमेश्वर हम इस व्यक्ति के जीवन में आपके प्रबंध को एक सामर्थी रूप से दिखाना चाहते हैं और इस तस्वीर में तेल उस प्रार्थना का प्रतीक है। यहाँ बात प्रार्थना की है। नए नियम की पत्रियों में केवल यही एक स्थान नहीं है जहाँ रोगी पर तेल मलने के बारे में बताया गया है, और ऐसी घटनाएं भी हैं जहाँ लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और तेल के बिना चंगाई होती है। अतः इस तस्वीर में ये अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये एक तस्वीर है जो याकूब हमें यहाँ दे रहा है। प्राचीनों के साथ प्रार्थना करने पर बल, परंतु इससे न चूकें। केवल प्राचीनों के साथ प्रार्थना करना ही नहीं, हम कलीसिया के साथ प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए। इस प्रकार की प्रार्थना पद 16 के अनुसार केवल प्राचीन के साथ ही नहीं बल्कि कलीसिया भी है। हाँ, चरवाहों पासबानों के रूप में प्राचीन उस भाई या बहन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो कलीसिया के साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। परंतु वास्तविकता ये है, इस प्रकार की प्रार्थना कुछ ऐसा नहीं है कि प्राचीनों में कोई विशेष सामर्थ है। इस प्रकार की प्रार्थना ऐसी है जो उपलब्ध है और हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का सामर्थ्य में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। परमेश्वर ने केवल कुछ कुलीन लोगों पर अपनी सामर्थ्य को नहीं उंडेला है जिन्हें आप प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, अब कुछ सामर्थी आ रहे हैं। इसके विपरीत परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य अपने सारे लोगों के लिए उपलब्ध रखी है, ताकि कोई भी संत, मसीह का कोई भी अनुयायी, विश्वास के परिवार का कोई भी भाई या बहन एलिया के समान, हम में से किसी भी व्यक्ति के समान सामर्थी रूप से, प्रभावी रूप से प्रार्थना कर सके। क्या ये अच्छी खबर नहीं है? जैसे जब कलीसिया की चोटों और आवश्यकताओं की बात आती है, तो चोटों और आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अगुओं के विशेष समूह की आवश्यकता नहीं है। अब ये रुचिकर है, नए नियम में ये एक मात्र पद है, पद 16, जहां विश्वासियों के रूप में हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानने की आज्ञा दी गई है, और ये आज्ञा एक दूसरे की चंगाई के लिए प्रार्थना के संदर्भ में दी गई है। अतः मैं चाहता हूं कि हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने और पापों के अंगीकार के बीच संबंध के बारे में सोचें, मेरे साथ बने रहें। पाप के कारण प्रत्यक्षता कुछ रोग होते हैं, और यहाँ निश्चित रूप से यही आशय है। नए नियम में पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 30 में एक तस्वीर है, जब लोग प्रभु भोज खाते हैं और ऐसा करके पाप करते हैं। पौलुस कहता है, इसी कारण तुम में से बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। अब हमें यहाँ सावधान रहना है कि हम ये न सोचें कि रोग हमेशा व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट पाप से जुड़ा होता है। यदि किसी को कैंसर है, जो स्पष्ट है कि उनके जीवन में पाप होगा, यहाँ का निष्कर्ष ये नहीं है। इसीलिए याकूब कहता है, यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अतः यहाँ की तस्वीर है कि किसी संदर्भ में रोग का कारण पाप होता है, और इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक चंगाई के लिए हमेशा प्रार्थना शामिल होनी चाहिए, परंतु बीमारी में हमेशा परमेश्वर के सम्मुख आत्मिक जांच भी शामिल होनी चाहिए। इस प्रकार हमें हर समय परमेश्वर के सामने अपने आप को आत्मिक रूप से जांचना चाहिए। परंतु ये संदर्भ जहां हम कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं आपके सामने शुद्ध होना चाहता हूं, मैं देह और आत्मा में पवित्र होना चाहता हूं, अतः पाप के कारण प्रत्यक्ष रूप से कुछ रोग होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारे रोग पाप के कारण होते हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि बीमारी और मृत्यु का आरंभ कहां से है। उत्पत्ति 3 और मनुष्य का पाप में गिरना। यदि मनुष्य पाप में नहीं गिरता तो संसार में कोई मृत्यु या रोग नहीं होते। अय्यूब के बारे में सोचें, एक धर्मी व्यक्ति जिसके पूरे शरीर पर फोड़े हैं लेकिन उनका कारण पाप नहीं है। अतः किसी भी तरह ये ना सोचें, ठीक है कोई बीमार है तो ज़रूर उसने कोई पाप किया होगा। यहाँ ऐसा नहीं बताया गया है। याकूब, यीशु, पूरा पवित्र शास्त्र इसका खंडन करते हैं। साथ ही रोग में हमें पाप से और अधिक घृणा नफरत करनी चाहिए, पाप से और अधिक घृणा करनी चाहिए, क्योंकि वो आरंभ से ही उसके पीछे का अप्रत्यक्ष कारण है। और जब हम अपने संघर्ष में बीमारी से होकर गुजरते हैं तो उसमें हमारे लिए आंशिक उद्देश्य पाप से घृणा करना, धार्मिकता से प्रेम करना और अपने आप को बचाए रखना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम रोग से जूझते हैं तो पाप करने की परीक्षा भी आती है, वहाँ कमज़ोरी है और हमें परमेश्वर की ताकत की ज़रूरत है। और इसीलिए याकूब कहता है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। दोनों एक साथ विश्वास का समुदाय एक दूसरे के साथ यही करता है। और यहीं पर मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ प्रत्येक भाई और बहन से, यदि आप विश्वासियों के किसी छोटे समूह में शामिल नहीं हैं जिसके साथ आप अपना जीवन बांट रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विश्वासियों के किसी छोटे समूह के साथ भागीदार बनें। इस प्रकार की बातों के कारण एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ऐसी बातें 2000 लोगों के एक कमरे में एकत्रित होने पर नहीं होती हैं। लेकिन हमसे ये अपेक्षित है तो हम इसे कहाँ करें? इसे हम जीवन में भाइयों तथा बहनों के साथ चलते हुए करते हैं, जिनके साथ हम आपस में अपने संघर्षों और अपने पापों को मानते हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए इस प्रकार के समुदाय की इच्छा रखता है और ये 2000 लोगों के बीच में अज्ञात व्यक्ति के रूप में बैठने से नहीं होता। ये एक दूसरे के साथ वास्तव में जीवन को बांटने के संदर्भ में होता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अब इस परिच्छेद में हमने जिस सवाल को संबोधित नहीं किया है वो है पद 15 का पहला भाग, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्या इसका अर्थ ये है कि यदि आप पर्याप्त विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो व्यक्ति चंगा हो जाएगा? कुछ का निष्कर्ष है कि यदि कोई व्यक्ति चंगा नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि हमने पर्याप्त विश्वास से प्रार्थना नहीं की। क्या ऐसा ही है? मैंने प्राचीनों ने हमने बीमार भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना की है जिनमें से कुछ चंगे हो गए और कुछ की मृत्यु हो गई, और मैं मृतकों के परिवार के सदस्यों से ये नहीं कहूँगा, स्पष्टता तुम में या हमारी प्रार्थना में पर्याप्त विश्वास नहीं है। अतः व्यवहारिक रूप से मैं नहीं सोचता कि यहाँ ऐसा कोई अर्थ है। तो पवित्र शास्त्र यहाँ क्या कह रहा है? वो तो अनुभव है, लेकिन यहाँ अधिकार का स्रोत पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? और यहीं पर याकूब हमें एलिया में एक उदाहरण देता है। काश हमारे पास पहला राजा 17 और 18 में उतरने का समय होता, आप उसे लिख सकते हैं। परंतु यदि आप उन दो अध्यायों में जाते हैं और आप देखेंगे कि याकूब यहाँ क्या कह रहा है, आप वहाँ पहला राजा 17 और 18 में एक पेचीदा संबंध को पाते हैं। एलिया की प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के बीच एक पेचीदा संबंध। आप देखेंगे कि पहला राजा बार बार बताता है कि कैसे एलिया को परमेश्वर के वचन द्वारा चलाया जाता है, निर्देशित किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, ताकत दी जाती है। यहोवा का वचन, और यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा और उसने कहा, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, यहोवा यूं कहता है। और फिर कुछ वर्षों के बाद यहोवा कहता है, वर्षा होने वाली है, जाकर अहाब से कह वर्षा होने वाली है। अध्याय 18 के अंत की ओर एलिया अपने मुंह के बल गिर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर वर्षा भेज, परंतु परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि वर्षा होने वाली है। अतः तस्वीर ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के बीच एक संबंध है। और खूबसूरती ये है, परमेश्वर ने कहा था मैं ये करने पर हूँ, और फिर भी अपने सर्वोच्च अनुग्रह में अपने वचन को पूरा करने के लिए वो एलिया की प्रार्थना का प्रयोग कर रहा था। अतः यहाँ की तस्वीर एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना, ये परमेश्वर के साथ सामंजस्य में प्रार्थना करने की तस्वीर है, परमेश्वर की लालसा, इच्छा और आकांक्षाएं। अब उसे प्रार्थना में लाएं, जैसे किसी भाई या बहन के लिए जिसे कैंसर है। क्या परमेश्वर ने हमसे कहा है कि वे जीवित रहेंगे? ज्यादा संभावना यही है कि हमारे निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन नहीं है जिस पर हम इस वचन के समान भरोसा कर सकें जो कि हमारे पास है। तो हम कैसे प्रार्थना करें? हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं। हम ये विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वही करेगा जो हम जानते हैं कि उसकी इच्छा है। हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यही बात यीशु बताते हैं, यदि तुम मेरे नाम से मेरी इच्छा के अनुसार जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लूका 11 से इसे वापस लाएं, क्योंकि हमने इसे प्रार्थना के बारे में यीशु की शिक्षा में देखा है। मैं इसे पुनः यहाँ याकूब 5 में लाना चाहता हूँ। एलिया की तस्वीर, प्रार्थना का रहस्य और प्रभावशाली प्रार्थना। पहला कदम, परमेश्वर की चाहतों को अपनी चाहत बनाएं। जब आप धार्मिकता में बढ़ते हैं, जब आप मसीह की समानता में बढ़ते हैं, तो आप भी वही चाहने लगते हैं जो मसीह चाहता है। परमेश्वर की चाहतों को अपनी चाहत बनाएं। और फिर दूसरा, जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, यही मुख्य है। अब हम में से कुछ के दिलों और जीवनों में ये संतोषजनक उत्तर नहीं है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्या परमेश्वर चंगा करेगा। परंतु इसके बारे में सोचें, जब आप इस कैंसर से पीड़ित भाई या बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा के बारे में क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है उसकी महिमा हो। आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि कमजोरी के समय में उसके सेवकों को ताकत, सांत्वना और सहायता मिले। आप जानते हैं कि इस पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसका सुसमाचार फैले। आप इसे जानते हैं और इसलिए आप उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे मन से उन बातों के लिए प्रार्थना करें और मन में जानें कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल गया है। अब स्पष्टता, कई बातें हैं जिन्हें हम पवित्र शास्त्र में नहीं जानते हैं, और परमेश्वर के सामने अपनी लालसाओं को बताने की आज़ादी है, परंतु इससे न चूकें। यह हमारे द्वारा परमेश्वर की बाजू को मरोड़ने की तस्वीर है, और यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम उसे पूरा कर लेते हैं। याद रखें, कई बार परमेश्वर अपनी सर्वोच्च बुद्धि और अनुग्रह में किसी कारण से चंगाई नहीं देता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 8 से 9 में पौलुस कहता है, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि वो मेरी देह से कांटा निकाल दे। 3 बार, और 3 बार परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं, नहीं। और पौलुस कहता है, मुझे महसूस हुआ कि मैं पर्याप्त विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फिर से प्रार्थना की। पौलुस ऐसा नहीं कहता है। इसके विपरीत परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा अनुग्रह तेरी निर्बलता में पर्याप्त है, और ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। मैंने महिमा का अनुभव किया है और ये यहीं रहेगा। और परमेश्वर कई बार ऐसा करता है, और वो भला है और वो सर्वोच्च है, और वो बुद्धिमान है और उसका दृष्टिकोण अनंत है। और इसलिए हाँ, हम अपनी लालसाओं को परमेश्वर के सामने व्यक्त करते हैं। परमेश्वर, हम ये कहने के लिए अपनी लालसाओं को परमेश्वर के सामने समर्पित भी करते हैं, मैं जानता हूँ कि आप भरोसेमंद हैं और आप भले हैं और आप बुद्धिमान हैं। मैं जानता हूँ कि आप में चंगा करने की सामर्थ है, परंतु मेरी सर्वोच्च इच्छा ये है कि आपको महिमा मिले। आप इस भाई या बहन को बल दें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आप वही करेंगे जो उनके जीवन में आपके सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए सर्वोत्तम है। और मुझे विश्वास है एक दिन अंत में आप इस भाई या बहन को अनंत काल के लिए जीवित करेंगे। ये विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। पापियों से प्रेम करता है, ये सब स्थिर रहने वाले विश्वास की अंतिम तस्वीर पर लाता है। स्थिर रहने वाला विश्वास पापियों से प्रेम करता है, मुझे ये पसंद है। हम इस पुस्तक के अंत में आ गए हैं जो हर प्रकार की आज्ञाओं और निर्देशों से भरी है। और याकूब कहता है, इन सारी बातों के प्रकाश में एक दूसरे की खोज करें। याकूब की पुस्तक के अध्ययन का कारण केवल ये नहीं है कि हम जानें कि हमें क्या करना है, किस तरह से जीना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो। याकूब की पुस्तक का लक्ष्य हमें ये भी दिखाना है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, इस तरह से जिएं जिससे परमेश्वर का आदर और परमेश्वर की महिमा हो। वो एक भाई को वापस लाने के बारे में कहता है, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। याकूब अध्याय 5:20, याकूब यहाँ सांसारिक पुनः स्थापना के बारे में बात कर रहा है। अपने भाई या बहन को उनके पापों से फिरा लाना, और वो कहता है वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, शाब्दिक रूप में उन्हें मृत्यु से बचाएगा और पापों पर पर्दा डालेगा। अब इन सब के कारण एक सवाल उठता है, क्या इसका अर्थ यह है कि मसीही अनंत मृत्यु के खतरे में है? मसीही आत्मिक मृत्यु के खतरे में है कि कोई मसीही है जिस पर अंत में पापों से उद्धार नहीं पाने का खतरा है? मैं चाहता हूँ यहाँ आप मेरे साथ बने रहें, यहीं आपको अनंत सुरक्षा की खूबसूरती का एहसास होता है। संपूर्ण नया नियम सिखाता है कि अनंत सुरक्षा सर्वदा निश्चित है। अनंत सुरक्षा, ये सिद्धांत, ये सत्य है कि मसीही उद्धार अनंत काल के लिए सुरक्षित है। जब आप अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में मसीह पर विश्वास करते हैं और जब वो उसके प्रति आपकी आवश्यकता के बारे में आपकी आँखों को खोलता है और आप पुनः जन्म लेते हैं और मसीह का आत्मा आपके अंदर आता है और ये आपकी विरासत के वायदे की गारंटी है, अतः आप अनंत रूप से सुरक्षित हैं। जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, रोमियो अध्याय 8:30। यही तस्वीर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि नए नियम का एक के बाद एक पद यही सिखाता है, परंतु सवाल ये है, परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, उनके उद्धार को पूरा करता है, कैसे? परमेश्वर अपने लोगों को कैसे संभालता है? परमेश्वर अपने लोगों को अंत तक वफादार कैसे बनाए रखता है? परमेश्वर उन्हें भटकने से कैसे बचाता है? और उत्तर है, अंत सुरक्षा को समुदाय द्वारा पूर्ण किया जाता है। ये खूबसूरत है, परमेश्वर इस संपूर्ण तस्वीर पर सर्वोपरि है। वो आपको संभालेगा, वो आपको कैसे संभालेगा? वो आपको भाइयों और बहनों से भरी कलीसिया के संदर्भ में रखेगा, जो आपको गलती करने से बचाएंगे, आपको भटकने से बचाएंगे, आपको मसीह के निकट रखेंगे। इसी कारण मसीहत को अकेलेपन के संदर्भ में नहीं जिया जा सकता, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। अंत तक वफादार बने रहने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। क्या परमेश्वर हमें वफादार बनाए रखेगा? हाँ, वो इसे कैसे करेगा? इसे वो कलीसिया के द्वारा करेगा। अनंत सुरक्षा एक सामुदायिक परियोजना है और आपको अंत तक वफादार बने रहने के लिए दूसरे भाइयों और बहनों की आवश्यकता है। और बात यह है, चाहे आपकी खातिर नहीं, फिर भी दूसरे भाइयों और बहनों को अंत तक वफादार बने रहने के लिए आपकी ज़रूरत है। अतः विश्वासियों के किसी छोटे समूह में शामिल हों जहां आप इस प्रकार अपना जीवन बांटते हैं, जहां आप आपस में इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे को आज्ञा पालन की प्रेरणा देते हैं और एक दूसरे को वफादार बनाए रखते हैं अपनी स्वयं की खातिर और दूसरे लोगों के जीवनों में मसीह की महिमा की खातिर, उनके उद्धार और उनके पापों पर पर्दा डालने की खातिर। सफल विश्वास केवल मसीह के अनुग्रहकारी सुसमाचार से ही संभव है। ये सब याकूब की पुस्तक में सफल विश्वास की ओर लाता है। ये केवल एक सारांश है, परंतु ये एक महत्वपूर्ण सारांश है। सफल विश्वास केवल मसीह के अनुग्रहकारी सुसमाचार से ही संभव है। जो हमने देखा है उन सबको एक साथ इकट्ठा करें। मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, मेरा बेटा नींद से उठता है, वो आकर मेरी गोद में बैठ जाता है और कहता है, आप क्या कर रहे हैं? और मैंने कहा, मैं संदेश तैयार कर रहा हूँ। वो कहता है, तो आप जल्दी ही प्रचार करेंगे? और मैंने कहा, हाँ। मैंने पूछा, मुझे क्या प्रचार करना चाहिए? उसने कहा, यीशु। मैंने कहा, अच्छी पुकार। मैंने पूछा, मुझे लोगों को यीशु के बारे में क्या बताना चाहिए? और उसने कहा, लोगों से कहें कि वे एक दूसरे के प्रति, अपने मित्रों के प्रति दयालु बनें। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन वे दयालु कैसे बन सकते हैं? और उसने कहा, उनसे कहें कि वे आपस में बांटें। मैंने पूछा, उन्हें एक दूसरे के साथ क्या बांटना चाहिए? और वो वस्तुओं की सूची बताने लगा। एक मिनट के लिए उसने सोचा और उन्हें अपने खिलौने और अपने मैक ट्रक और अपनी कारें और अपनी पहेलियां और अपनी पुस्तकें एक दूसरे के साथ बांटनी चाहिए। उसने अपनी सूची को पूरा किया और मैंने पूछा, वे इस तरह कैसे बांट सकते हैं? और उसने कहा, क्योंकि यीशु हमारे पापों को हटाने के लिए क्रूस पर मरा। और मैंने कहा, हाँ, तुम तो प्रचार भी करते हो दोस्त। ये सुसमाचार पालन है। हम इस प्रकार जीते हैं, ये उसका बहाव है जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा, और हम उसके जीवन से जुड़े हैं। सफल विश्वास का बहाव केवल मसीह के अनुग्रहकारी विश्वास के द्वारा ही संभव है। मसीह की देह के संदर्भ में काम में लिया जाता है। मसीह की देह के संदर्भ में काम में लिया जाता है। याकूब बार 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 कहता है, भाइयों भाइयों, प्रिय भाइयों भाइयों, विश्वास एक साथ जिया जाता है, एकांत में नहीं। चाहे ये परीक्षाओं में से गुजरना हो, बुद्धि की खोज हो या कंगालों की देखभाल हो, मसीह की देह का हिस्सा होने का यही अर्थ है। इसका अंतिम लक्ष्य मसीह की महान महिमा करना होता है। और अंत में कार्य करने वाले विश्वास का अंतिम लक्ष्य मसीह की महान महिमा करना होता है। भाइयों और बहनों, यदि आज की मसीहत में संसार आज के बाद कभी केवल प्रार्थना करने वाले और फिर शेष संसार के समान जीने वाले लोगों की तस्वीर ना देखे, तो ये कैसे होगा? क्या होगा यदि संसार देखे कि कुछ लोग हैं जिनका जीवन पूरी तरह अलग है, क्योंकि मसीह में विश्वास के द्वारा वे रूपांतरित हो गए हैं।